بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت رات کو، اس کا بیان. پہلے یعنی عرب میں ایسا معمول تھا کہ لوگ راتوں کو عشاء کے بعد، حضور جب تک نہیں آئے تھے تو عشاء کی نماز کا تو تصور نہیں تھا، اس لیے رات میں کافی دیر تک آپس میں بیٹھتے، بات کرتے، قصے کہانیاں سناتے، ایک معمول تھا. خاص طور پر جب چاندنی راتیں ہوتی تو لوگ اکٹھے ہوتے گھروں کے باہر اور دیر تک قصے کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے، اپنی زندگی کے واقعات، تجربات، اشعار. یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں، دیہاتوں میں آج بھی یہ معمول ہے کہ راتوں کو وہ لوگ اپنے گھر کی چوپالوں پر بیٹھتے ہیں اور وہاں پر باتیں چلتی ہیں، قصے کہانیاں ہوتے ہیں، تبادلہ خیالات ہوتے. ہر جگہ پہلے تقریباً ایسا معمول تھا، لیکن کچھ دنوں سے جب سے یہ مشینی دور آیا ہے لوگوں نے اس طرح کی مجلسیں چھوڑ دی ہیں. تفریح طبع کے لیے لوگ جمع ہوا کرتے تھے، اب تفریح طبع کا سارا سامان گھروں میں ٹی وی، ڈش اینٹینا اور اب فون کے اندر سب کچھ آ چکا ہے. پہلے یہ چیزیں صرف تفریح طبع کے طور پر تھیں، ڈرامے شروع ہوئے تفریح طبع تھے، اس طرح ہی کچھ باتیں ہوتی تھیں. لیکن اب یہاں سے آگے بڑھ کر فحش تک یہ بات پہنچ چکی ہے اور فحش کا ارتکاب جتنا انسان آج خود سے کر رہا ہے شیطان بھی اتنا نہیں کرا رہا ہوگا جتنا خود سے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، حوصلہ دیا ہے، عقل دی ہے، پھر بھی انسان رک نہیں پاتا ہے اور انسان برائیوں تک پہنچ جاتا ہے، جس کے بے شمار نقصانات ہیں. بظاہر ہم اچھے نظر آتے ہیں، دیندار ہیں، مخلص ہیں، لیکن اخلاقی اعتبار سے ہم لوگوں میں گراوٹ کافی آ چکی ہے. اخلاق جو پہلے تھے، دل کی صفائی جو پہلے تھی، وہ اب بہت دور تک نظر نہیں آتی ہے. پہلے تو ایسی شرما شرمی تھی کہ اچھے گھروں کے بچے سنیما ہالوں میں نہیں جاتے تھے، چائے کے ہوٹلوں پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے. ہمارے ایک تعلق والے ہیں اور آپ سب حضرات جانتے ہوں گے، ڈاکٹر اقبال سیٹھ صاحب، وہ کچھ دنوں سے بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو شفا کلی نصیب فرمائے. تو وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ پڑھتے تھے، تقریباً 80 سال کی عمر ہے ان کی، تو وہ چائے کے ہوٹل پہ چائے پینے کے لیے چلے گئے اپنے ایک دوست کے ساتھ میں، تو ان کے چچا نے دیکھا تو آنے کے بعد اوہو تم بھی وہاں چلے گئے، بڑے تعجب سے کہا اور اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا. تو اچھے گھرانوں کے بچے چائے کے ہوٹلوں پہ بھی نہیں جایا کرتے تھے، ایسی غلط جگہ نہیں جایا کرتے تھے. سنیما ہال جانا تو بہت ہی مشکل تھا ایک شریف انسان اور شریف بچوں کے لیے، شریف گھرانوں کی اولاد کے لیے، اور اگر کوئی ڈالی ٹوپی والا چلا جائے تو بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا. और अब तो साहब यहां मोबाइल में सब कुछ है, रात को फिल्म देखें, सुबह नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ाएं, कौन कुछ कहने वाला है, कौन देखने वाला है। तो फहश यहां तक आ चुका है, अंदर तक दाखिल हो चुका है। अरब के अंदर ये था कि लोग जमा होते थे, किससे कहानियां होती थी, उनमें बातचीत हुआ करती थी। इशा के बाद में अफजल और बेहतर तो ये है कि जितना जल्द हो सके सो जाएं, खाने से मगरिब के बाद ही फारिग हो जाएं, और इशा के बाद जितना जल्द हो सके सोने की कोशिश करें। माशी जरूरत के लिए, रोजगार के लिए, आपका रोजगार ऐसा है तो जागे, कोई हर्ज की बात नहीं है। ये किताबों का मुताला है, दीनी जरूरत है तो जागे, कोई बात नहीं है। इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं है तो फिर उसमें मशगूल नहीं होना चाहिए, बल्कि सोने की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। ये इस्लाम का मिजाज है। लेकिन इशा के बाद में अगर आप अपने घर वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ जायज बात करें, बातचीत करें और सही किस्से कहानियां सुनाएं, तारीखी बातें सुनाएं, ऐसी बातें या इतनी देर तक बातें कि फर्ज पर कोई आंच ना आए, फर्ज में कोताही ना होए कि देर तक आप जाग रहे हैं और फजर की नमाज में कोताही हो रही है, इस तरह की अगर ये सब चीज़ों का ख्याल करते हुए आप बातचीत करते हैं, किस्से कहानियां जो सही किस्से कहानियां हैं वो सुनाते हैं, जिनमें कोई खुराफात वाली चीज़ नहीं है, तो दुरुस्त है, जायज़ है। इस बाब के अंदर ऐसी ही दो हदीसें हैं जिनसे इस बात का जवाब साबित होता है। पहली जो हदीस है, हजरत मसरूक हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के दरमियान थे। कौन बयान करती हैं ये? हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बीवियों के दरमियान थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किस्सा सुनाया, एक बात कही। तो उनमें से एक औरत थी, नाम नहीं लिया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने, अजवाज मुतहरात ही में से, बीवियों में से, उन्होंने ये कहा कि अन्नल हदीस हदीस खुराफा, ये जो किस्सा अभी बताया है ये तो ऐसा है जैसे खुराफा की बातें, खुराफा के किस्से, खुराफा की कहानियां। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अतदरूना मा खुराफा, तुम जानती भी हो खुराफा कौन था और इसकी क्या हकीकत है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया कि खुराफा बनु उजरा एक कबीला है, उसका एक आदमी था, असरत हुल जिन्न फिल जाहिलिया, जमाना जाहिलियत में, इस्लाम से पहले, जिन्होंने जिन्नात ने उसको उठा लिया और उठा कर ले गए। फमकसा फीहिम दहरन, और कत्ल नहीं किया, मारा नहीं, बल्कि अपने पास ठहराए रखा। एक लंबे जमाने तक ये शख्स जिन्नातों के दरमियान रहा है, फिर बाद में इन्होंने इसको छोड़ दिया। तो अब जब ये अपने कबीले में आया, अपने घरवालों के पास में आया, तो ये जो जो अजीब व गरीब बातें इसने वहां पर देखी थी जिन्नात में, जिन्नातों की जिंदगी में, उनकी दुनिया में, तो वो सारी बातें बयान करता था, और वो बड़ी अजीब व गरीब बातें होती थी। बीमार फीहिमल आजीब फ़काल नास, तो अब जब भी कोई अजीब बात सामने आती थी तो लोग कहते थे ये तो ऐसा है जैसे जैसे खुराफा की कोई बात, उसकी बयान की हुई कोई कहानी, उसका बयान किया हुआ कोई किस्सा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बयान फरमाई। इसमें बताना जो चाहते हैं मुसन्निफ, वो ये बताना चाहते हैं कि देखो यहाँ पर इस हदीस में ये बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में इशा के बाद अपने घर वालों के साथ बातचीत कर रहे हैं और कोई किस्सा सुना रहे हैं। इससे बात मालूम होती है कि इशा के बाद में अपने घर वालों को कोई किस्सा सुनाया जाए, कहानी सुनाई जाए, उनसे बातचीत की जाए, बशर्ते कि वो इतनी देर तक हो कि फर्ज में कोताही ना हो और ऐसी बात हो जिसमें कोई खुराफात ना हो, गलत चीज ना हो। तो ये दुरुस्त है, जायज है, इसकी शरीयत इजाजत देती है, ये कहना चाहते हैं। इसके अंदर एक बात और है कि ज़माने जाहिलियत में बनु उज़रा के इस शख्स को जिन ले गए थे। असल में ऐसा ही था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले शयातीन और जिनों ने बड़ा गलबा हासिल कर रखा था, और मक्के के अंदर, अरब के अंदर काहिनों का और जादूगरों का बहुत जोर था। जगह जगह काहिन लोग बैठे हुए थे, जादूगर लोग बैठे हुए थे, और ये लोग जो थे ये जिनों को अपने कब्जे में रखते थे, शयातीन को अपने कब्जे में रखते थे, मंत्रों के जरिए से कुछ कर अमलियात वगैरह करके अपने कब्जे में रखते थे। ये जो शयातीन थे, ये शयातीन आसमानों पर जाते और वहां जो कुछ चर्चे होते थे आइंदा की खबरों के बारे में उनको सुनाकर, उनको लेकर ये अपने काहिन को सुनाया करते थे, और ये जो काहिन होता था ये लोगों को बताता था, तो लोग इस पर एतकाद रखते थे, देखो भाई इन्होंने वो बात बताई थी वो सही हो गई, आइंदा के बारे में ये बात बता रहे, इंतजार करते थे वो सही हो जाती थी, क्योंकि आसमान की खबरें होती थी वो। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बिअसत हुई, आप तशरीफ लाए, तो जिन्नों का और शयातीन का ये तसल्लुत खत्म हो गया। अब फिर ये हो गया कि कुरान की हिफाजत मकसूद थी कि कुरान बाहिफाजत तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे, इसलिए आसमानों पर पहरा डाल दिया गया, पहरा हो गया। अब अगर कोई शयातीन, शयातीन में से कोई ऊपर जाता था तो उसको शरारा तोड़कर, यानी आग का अंगारा तोड़कर उसको मारते हैं फरिश्ते, और वो वहां से भागता है, या तो खत्म हो जाता है या फिर वो नाकारा हो जाता है शैतान। उनके अंदर ये ताकत नहीं रही कि वो आसमान की खबरें चुरा कर किसी को बताएं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का असर है। यही वजह थी कि जब उन्होंने ये महसूस किया कि अब हमारे लोग जब आसमानों पर जाते हैं तो वहां पर पहरा है, और बड़ा जबरदस्त पहरा है कि पीछा किया जाता है, मारा जाता है, खत्म कर दिया जाता है, तो आखिर दुनिया में कोई खास वाकया पेश आया है, खास वाकया। इसके लिए जिनों के सरदारों ने अपने लोगों को सारी दुनिया में भेजा, जाओ देख कर आओ क्या खास वाकया पेश आया है। तो ये लोग आए, मक्के में पहुंचे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये पहुंचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से कुरान सुना, इन्होंने कुरान सुना तो समझ गए हाँ यही खास वाकया है, और यही कलाम है जिसकी बुनियाद पर हमको आसमानों से रोक दिया गया है। फिर जिनों की एक बहुत बड़ी तादाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मुसलमान हुई है। आपकी जिंदगी में तकरीबन 3 मरतबा ऐसे वाकयात पेश आए हैं कि जिनों की बड़ी तादाद आई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। और चूंकि जिनों की उम्र बहुत होती है, इसलिए जो जिनों के वो असहाब और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम की बैत की थी, मुसलमान हुए थे, बहुत जमाने के बाद तक भी कुछ हजरात ने उनसे मुलाकात की है। मसलन हिंदुस्तान के ही एक बहुत बड़े आलिम थे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके जमाने का वाकया है कि उनकी एक जिन सहाबी से मुलाकात हुई है, और इस तरह से मुलाकात हुई उनकी जिन सहाबी से कि वो अपनी मस्जिद में मुताला फरमा रहे थे, सांप आ गया सामने से, सांप, ये सांप का बच्चा था, उन्होंने उस सांप को, ये सांप का जो बच्चा जो भी था उसको उन्होंने ये कहा अगर तू कुछ और है तो चला जा, और उस नहीं गया तो उसको मार दिया। अब ये उसको मार दिया, थोड़ी देर के बाद में दो आदमी आते हैं और ये कहते हैं कि हजरत आपने हमारे एक शख्स को कत्ल किया है, इस जुर्म में आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने फरमाया कि मैंने तो किसी को कत्ल नहीं किया भाई। नहीं साहब, आपने सांप को मारा है, वो जिन था। यहां रुककर एक बात और सुनिए, अल्लाह ताला ने जिनों को जो बनाया है दो तरह से, उनमें से एक किस्म वो है कि जो कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकती है, बिल्ली बन जाएंगे वो, कुत्ता बन जाएंगे, सांप बन जाएंगे, कुछ भी बन सकते हैं वो, इंसान की शक्ल में भी आ जाएंगे। और जिनों की एक किस्म वो है कि जो सिर्फ अल्लाह ने एक खास उनको शक्ल दे दी है वो उसी में रहेंगे। वो मसलन किसी को सांप की शक्ल दे दी है, जिन है वो मगर वो सांप ही रहेंगे। किसी को बिल्ली की शक्ल दे दी है, हालांकि जिन है वो लेकिन वो बिल्ली ही रहेंगे। कुत्ते की शक्ल दे दी है, जिन है हकीकत में वो, लेकिन अल्लाह ने कुत्ते की शक्ल में पैदा किया है तो उसी के अंदर रहेंगे वो। तो हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने फरमाया, मैंने तो किसी को कत्ल नहीं किया। वो कहने लगे, नहीं साहब कत्ल किया है, आपको तो चलना ही पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो उठा कर ले जाएंगे। हजरत ने कहा, चलो अच्छा मैं चलता हूं। उन्होंने कहा, आंख बंद कीजिए, आंखों पर पट्टी बांधी और कुछ देर तक चलते रहे। चलने के बाद में आंख खोलिए तो वहां पर एक अजीब आलम उनको नजर आया। एक जनाजा रखा हुआ है, अदालत लगी हुई है और सामने एक जज बैठे हुए हैं जो बहुत ही ज़ईफ़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, और इतना ज़ौफ़ और इतना वो नज़र आ रहा है बुढ़ापा कि उनकी भुएँ भी लटक रही हैं। तो वहाँ पर मुकदमा पेश हुआ कि इन साहब ने इनको कत्ल किया है, मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने इनको कत्ल किया है। तो जज ने इनसे पूछा, अपनी निगाहें अपनी भौं पर उठाकर, साहब आपने इनका कत्ल किया है कि सही बात है? उन्होंने फरमाया, मैंने तो एक सांप को कत्ल किया था, इसे तो कत्ल नहीं किया। नहीं, वो तो जिन था जिसको कत्ल किया। कहने लगे, मुझे क्या पता। फिर एक हदीस सुनाई, इस हदीस में यह है कि अगर कोई किसी की शक्ल इख्तियार कर ले तो वो उसी के हुक्म में है। तो हमने देखा कि ये सांप की शक्ल में है तो सांप के हुक्म में, सांप के मुतालिक शरीयत का हुक्म यह है कि उक्तुलुल मूजी कबल ईजा, ईजा देने वाला जो जानवर है उसको ईजा देने से पहले पहले मार डालो। घर में बिच्छू निकल आया तो ईजा देगा, सांप निकल आया तो ईजा देगा, तकलीफ देगा तो तकलीफ देने से पहले पहले मार देने का हुक्म है। तो मैंने तो उस पर अमल किया है, यह हदीस मेरे पास पहुंची है। तो वो जो जज बैठे हुए थे उन्होंने निगाह उठाई ऊपर, कहा कि मैंने यह हदीस खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है और ये सही कह रहे हैं, लिहाजा इनको छोड़ा जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है। तो ये हजरत शाह साहब पूछते, क्या आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है? कि हाँ मैंने ज़ियारत की है। और उन्होंने बताया कि सबसे पहली जमात जिनों की जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई थी, जहाँ मस्जिद जिन बनी हुई है वहाँ पर उसी जगह, उसमें मैं भी था और मैं हुजूर के हाथ पर मुसलमान हुआ हूँ। मैंने बहुत सी हदीसें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी है। तो फिर इन्होंने कहा, क्या मैं आपके करीब आकर आपके हाथ को बोसा दे सकता हूँ? उन्होंने इजाज़त दी इसकी और फिर इनको वहाँ से छोड़ दिया गया। और इन्होंने ये वाक़या बयान फरमाया, इसमें ये बात है कि जिनों की उम्र बहुत होती है और एक बहुत बड़ी तादाद जिनों में ऐसी रही बहुत दिनों तक जो सहाबा थे। इंसानों की उम्र तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमार उम्मती मा बैन सित्तीन इला सबईन, मेरी उम्मत की उम्रें आम तौर पर 60 से 70 के दरमियान रहेंगी। आपने देखा होगा अक्सर इसी दरमियान जाते हैं, अगर कोई ऊपर तक जा रहा है तो बोनस में है वो, अल्लाह का शुक्र अदा करे और इसमें जितनी भी खैर और नेकी हो सकती है कर ले, ये अल्लाह की तरफ से उसको बेहतरीन मौका मिला है, बेहतरीन मौका मिला है। लेकिन जिनों की उम्र बहुत होती है, 1000 साल से ऊपर, 1100, 1200, 1500, तो बहुत दिनों तक, कैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने बिअसत से पहले पहले जिन बड़ी शरारत करते थे, बहुत तसल्लुत था, इंसानों को परेशान करते थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने की एक बरकत ये हुई कि जिनों का इस तरह का तसल्लुत आम तौर पर ख़त्म हो गया और काहिन लोग जो लोगों के दिलों पर हुकूमत करते थे और उनको बहकाते थे, पुजलाते थे, अकीदे खराब करते थे, जिनों की उन खबरों की बुना पर जो खबरें वो आसमानों से चुरा कर लाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिरसत की बरकत से वो सिलसिला भी खत्म हो गया। तो जमाना जाहिलियत में तो यहां तक करते थे कि लोगों को उठा कर ले गए, औरतों को उठा कर ले जाते थे, उनके साथ गलत सलत काम किया करते थे, इस तरह से बहुत किस्सा होता था। लेकिन हुजूर की बरकत से सारी चीज़ें क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब भी अगर कहीं पर ऐसा मामला हो जिन परेशान करते हैं किसी घर के अंदर या किसी के ऊपर आते हैं, तो इसका इलाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में, जिस घर में शयातीन का इस तरह से अमल दखल हो, सूरह बकरा की वहाँ तिलावत की जाए, खुद तिलावत करो। ये जो आजकल फैशन चल गया है ना, सब टेप रिकॉर्ड में आप चला कर छोड़ दें और सब बस चल रहा है वो, और सोचते हैं इससे सब कुछ हो जाएगा। अच्छी तरह समझ लीजिए, कभी कभी इससे गुनाह होता है। क्यों गुनाह होता है? कुरान जब पढ़ा जाए तो हुक्म है, इदा कुरिया अल कुरान फस्तमिऊ लहु व अनशितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनना है, पूरी तवज्जो उसी तरफ देनी है। या हम चलाकर छोड़ देते हैं और बाकी सारे काम कर रहे हैं, कुरान नहीं सुनते। कई दुकानों पर मुझे, मैं गया और मैंने देखा कि साफ टेप रिकॉर्ड चल रहा है, कुरान चल रहा है और ये लेन देन कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। तो मैंने बहुत प्यार से ठोड़ी में हाथ डाल कहा, भाई ये गुनाह सर मत लो, कुरान लानत भी भेजता है, बद्दुआ भी करता है कुरान, अच्छी तरह समझ लो। कुरान का हुक्म ये, जब पढ़ा जाए तो गौर से सुनो। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि सूरह बकरा को पढ़ा जाए, खुद पढ़े आप, घर में जो भी पढ़ने वाला हो वो पढ़े, आप लोग सुने, जो ना पढ़ने वाले हो वो सुने। जिस घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत होती है, उस घर के अंदर शयातीन नहीं आ सकते, नहीं रह सकते, अगर हैं तो चले जाएंगे। दूसरा ये कि आप उस घर के अंदर कभी कभी अजान दें, दिन में एक दो दफे अजान दें, और इस अजान के लिए जैसे मस्जिद के अंदर अजान के आदाब है, ऐसे आदाब भी जरूरी नहीं, बैठ के भी दे सकते हैं आप, खड़े होकर भी दे सकते हैं आप, बिला वजू भी आप दे सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, अल्लाह का नाम है। अजान की बरकत तो यहां तक लिखी है कि अगर आपकी औलाद नफरमान है तो आप उसकी उसके कान में अजान दें, तो इस अजान की बरकत से वो औलाद फरमा बरदार हो जाती है। रोज अजान देना शुरू कर दें आप, घोड़ा या कोई सवारी आपकी ना फरमान है, अजान दीजिए आप उसके कान में, फरमाबरदार हो जाएगी। गुलाम आपका ना फरमान है, अजान दीजिए। तो घर के अंदर, जिस घर में अजान दी जाती है, शयातीन रुखसत हो जाते हैं। और सूरह बकरा की तिलावत करें, और सुबह शाम आखिर की सूरतें पढ़ने का मामूल बना लें, कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु रब्बिल फलक, कुल औज़ु रब्बिन्नास, तीन तीन मरतबा। शयातीन के जो बाप है ना, वो भी पास नहीं आ सकते, जो उनके बड़े बड़े सरदार कितने भी खतरनाक हो, वो भी पास नहीं आ सकते आपके। मामूल बना लें आप इसका। देखो, इसको ये ना समझो कि ये नुस्खा तो सबको आता है तो इससे क्या होगा। अल्लाह का एक निज़ाम है, जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है इतना उसको आम करते हैं, अल्लाह का निज़ाम है। जैसे पानी की हर इंसान को ज़रूरत है, हर वक्त ज़रूरत होती है, कितना आम कर दिया, हर जगह आपको पानी मिल सकता है। इसी तरीके से अल्लाह को यह पता था कि एक जमाने में लोग इस तरह की चीजों से परेशान होंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से यह आसान नुस्खा दे दिया ताकि हर बंदा कर ले और हर बंदा महफूज हो जाए, और किसी आमिल के पास जाकर फिर अपने अकीदे खराब ना करे। अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। तो देखिए, हदीस का तर्जुमा करता हूं मैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों को एक किस्सा सुनाया। एक औरत ने कहा, यह किस्सा हैरत और ताज्जुब में तो बिल्कुल खुराफा के किस्सों जैसा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़ फरमाया, जानती हो खुराफा का असल किस्सा क्या था? ये खुराफा बनू उज़रा का एक शख्स था जिसको जिन्नात पकड़ कर ले गए थे। एक अरसे तक उन्होंने उसको अपने पास रखा, फिर लोगों में छोड़ दिया। वहाँ के ज़माना क़याम के अजाइबात वो लोगों से नकल करता था तो वो मुतहय्यिर होते थे। इसके बाद लोग हैरत अंगेज किस्से को हदीस खुराफा कहने लगे। अगली हदीस, हदीस उम्मे ज़रा है। ये एक बहुत लंबी हदीस है, और इस हदीस को उम्मे ज़रा इसलिए कहते हैं कि इसमें ख़ास तौर पर उम्मे ज़रा एक औरत है, उनका किस्सा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आयशा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा हूँ जैसे अबू ज़रा और तुम मेरे लिए जैसे उम्मे ज़रा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही थी, इसलिए इस हदीस का नाम ही हदीस उम्मे ज़रा हो गया, वरना तो इसमें 11 औरतों की कहानी और किस्से हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह किस्सा हज़रत उरवा को सुनाया है, जो इनके भांजे होते हैं और इनके ख़ास शागिर्द हैं, और इनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किस्सा सुनाया है, और यह किस्सा तकरीबन हदीस की अक्सर किताबों में मौजूद है। इससे भी मुसन्निफ़ ये बताना चाहते हैं कि रात के वक्त अपने घर वालों के साथ इस तरह के किस्से कहानी जिनमें कोई खुराफात ना हो, कोई ना कोई सबक हो, तो सुनाए जा सकते हैं, इसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किस्सा अपनी अहलिया के साथ शेयर किया है। बाद हजरात का ख्याल यह है कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने हुजूर को सुनाया, लेकिन ज्यादातर राय यही है कि हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने सुनाया था ये किस्सा। किस्सा क्या है? हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, जलसत इहदा अशरा इमरातन मा, इसको मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है, फिर उसकी पूरी तफसील आने वाली जुमरात को इंशाल्लाह करूंगा आपके सामने। हजरत आयशा फरमाती हैं कि कुछ औरतें, 11 औरतें एक जगह बैठी, और ये किस्सा यमन का है, यमन के किसी देहात में, और इन सब औरतों के शौहर कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए ये औरतें जो थी बिल्कुल फारिग थी, खाली थी इस वक्त में, तो इकट्ठी हुई एक जगह, और वहां पर इकट्ठा होने के बाद में इन्होंने आपस में ये मुआहदा किया कि हम में से हर एक अपने शौहर की बात बताएगा और कोई छुपाएगा नहीं, बताएगी छुपाएगी नहीं, बिल्कुल सच सच जो हकीकत है उसके शौहर की, पक्का मुआहदा किया इन्होंने। ठीक है, तो अब हर एक ने अपने घर की कहानी, अपने शौहर के हालात बयान करनी शुरू की। उनमें से एक औरत ये कहती है कि ज़ौजी लहमु जमलिन गस्सिन अला रास जबलिन वारिन ला सहलिन फयुर्तका वला समीन फयुन्तका। पहली औरत ने अपने शोहर का किस्सा इस तरह से बयान किया है कि मेरा जो खाविन है वो नाकारा दुबले ऊंट के गोश की तरह है, गोया बिल्कुल गोश का एक टुकड़ा है जिसमें जिंदगी बाकी ही नहीं रही, और गोश भी ऊंट का जो ज्यादा मरगूब भी नहीं होता, और गोश भी सख्त दुश्वार गुजार पहाड़ की चोटी पर रखा हुआ है, और ऐसी चोटी पर कि उसका रास्ता आसान नहीं है जिसकी वजह से चढ़ना मुमकिन हो, और वो गोश भी ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से 100 दिक्कत उठाकर उसके उतारने की कोशिश ही की जाए और उसको इख्तियार किया जाए। कहना यह चाहती है औरत कि मेरा शौहर एक बेकार हस्ती है जिससे ना कोई जानी फायदा है ना माली फायदा है, इसके बावजूद मुतकब्बिर और बदखुल्क भी है। शोहर अगर ऐसा है ना जानी फायदा ना माली और फिर बदअखलाक भी हो, इसका मतलब करेला नीम चढ़ा, करेला कड़वा होता है ना, और अगर नीम के दरख्त पर वो करेले की बेल चढ़ा दी जाती है तो उसमें कड़वाहट और हो जाती है, इसलिए मिसाल बन गई उर्दू में करेला नीम चढ़ा। तो ना माली फायदा है उससे, ना कोई जानी फायदा है उससे, फिर बदखुल्क है, बदमिजाज है, ऐसा कि उस तक रसाई भी मुश्किल है। कहना ये चाहती है न मिलते बन पड़े न छोड़ते बन पड़े, किसी मसरफ की दवा नहीं, बेकार महज है, और बदखुल्की और सख्त मिजाजी की वजह से उस तक रसाई भी मुश्किल है, ये औरत कहती है। तो इसने गोया अपने शोहर की जो कुछ हालत थी वो बता दी। उसमें एक बहुत बड़ा सबक है शोहरों के लिए कि शोहरों को हमेशा ऐसा होना चाहिए कि उनके जरिए से उनकी औरतों को, उनकी जो बीवी है या उनके बच्चे हैं, उनको जानी फायदा हो माली फायदा हो, अखलाक इतने उम्दा होने चाहिए कि वो हमारे अखलाक की तारीफ करते न थके। ऐसा इंसान बन जाए तो वो इंसान कामिल होता है। जिस इंसान के अखलाक की तारीफ उसकी बीवी कर दे, समझो वो इंसान सबसे ज़्यादा कामयाब है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अली के यहाँ ये बात थी कि हजरत खास तौर पर पूछते थे मुरीदीन से, घर में कैसे अहवाल हैं तुम्हारे, बीवी के साथ रहना सहना कैसा है तुम्हारा। एक बहुत बड़े आलिम उनसे बैत होने के लिए आए थे, तो हजरत ने, वो अहले हदीस आलिम थे, हजरत ने तीन शर्तें रखी इसके बाद बैत करूंगा। पहली शर्त यह है कि हदीस तुमने चूंकि अहले हदीस आलिमों से पढ़ ली है, किसी हनफी आलिम से ही पढ़ लेना, इतदाल पैदा हो जाएगा मिजाज में। दूसरी बात आप हजरत ने फरमाई कि कुरान करीम पूरा तजवीद के साथ शुरू से आखिर तक पढ़ना। तीसरी बात हजरत ने फरमाई अपनी बीवी से एक पर्चा लिखवा के लाना जिसमें लिखा हुआ हो कि मेरे शोहर मेरे साथ किस तरह से रहते हैं, सही अखलाक के साथ रहते हैं। वो बहुत बड़े आलिम थे, वो कहने लगे पहली दो बातें थे मैंने एक साल में पूरी कर ली, कुरान करीम बेहतरीन तजवीद के साथ पढ़ लिया, हदीस की किताबें हनफी आलिम के सामने ही मैंने पढ़ ली सारी, लेकिन इस जो तीसरी बात के लिए मुझे बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। बहुत दिनों तक मैं अपनी बीवी के साथ अच्छा मामला करता रहा और मैंने पूरी अपनी ज़िंदगी बदल दी, अखलाक बहुत सही कर लिए, हर चीज़ में बस एहसान ही एहसान एहसान ही एहसान। उसके बाद में मैंने 6 महीने एक साल के बाद बीवी को कहा, मेरे शेख ने कहा है कि तुमसे पर्चे लिखवा के लाऊँ कि मैं तुम्हारे साथ कैसा हूँ, कैसे अखलाक, इधर लिख के दे दो। तो मुस्कुरा कर बोलती हैं 6 महीने पहले अगर बोलते तो कभी नहीं लिखती, अब काफी बदल गए हो आप, इसलिए अब लिख के देती हूं, आपका मामला मेरे साथ बिल्कुल सही है। एक हदीस भी है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतर हो। हमारी हालत ये है कि दूसरों के सामने तो हंस के मुस्कुरा के पेश आते हैं, जब घर में चले जाते हैं तो बस अबूसन कमतरीरा की तरह मुंह बना लेते हैं, वो सोचते हैं इसी में बस हमारी हमारा रौब रहेगा, इसी में हमारा घर चलेगा और इसी में हमारी शान है। ये शान वान नहीं है, बेकार की बात है। अगले आगे कुछ बातें आ रही हैं इसी हदीस के अंदर, बताऊंगा इंशाल्लाह कि मर्द को घर में किस तरह से रहना चाहिए जिससे घर बनता है। अल्लाह ताला उन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत अहम किस्सा है, इसलिए अगली दफ़ा जल्दी से आइए, जल्दी से सभी आ जाते हैं, हमें आने में देर होती है, लेकिन तवज्जो के साथ सुनिए इंशाल्लाह। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله كامل توبة كامل هداية كامل عافية نصيب فرمائيه صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين